ركوع نمبر 9. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں, اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. ذالک هو الخسران المبین, انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھایا. واقعی یہ کھلا دشمن ہے, یہ واقعی یہ کھلا نقصان ہے. اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان پہنچا نہ سکیں. یہی تو دور درازی کی گمراہی ہے, اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی. ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا, وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے خلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے, پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے, جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین, بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین, ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلے فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. علم تر ان اللہ یسجد لہ, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے انسان بھی. ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ, جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. سچ ہے نا. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں. بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے تیار کر کے کاٹے جائیں گے, اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا. یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود, جس سے ان کی پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی. ولہم مقامع من حدید, اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. کلما ارادوا ان یخرجوا منها, جب کبھی یہ وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو وہیں لوٹا دیے جائیں گے, اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. یہ تھا رکوع نمبر 9. اس کا عنوان کیا ہے؟ کناروں سے اندر آ جاؤ. رکوع کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی, جو دین کے کناروں پہ رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں تو کناروں پہ رہ کے, دین کی محفل میں رہتے ہیں تو کناروں پہ. کیوں؟ اچھی لگے گی تو اندر آ جائیں گے, بات بور ہونے لگے, بات مشکل لگی تو پیچھے گزر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں ایسے لوگوں کے ناطے سے اس رکوع میں دی ہیں, یاد رکھنے کے قابل ہیں. کیا ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو کناروں پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر فائدہ ہو جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں, مصیبت آتی ہے تو الٹے پھر جاتے ہیں. دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نفع اور نقصان نہیں دیتے. میں اس کو ایسے سوچتی ہوں کہ دین کی محفل سے اٹھ کے ایسی بازار ایسی شاپنگ میں چلے جاتے ہیں جس سے دین نہ دنیا کچھ نہ ملا. پھر یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. کیسے؟ अब यहाँ बैठे रहेंगे तो फिर इफ्तारी कौन बनाएगा, कौन करेगा मदद? मैं तो अकेली हूँ काम करने वाली, लिहाजा छोड़ो इस क्लास को, घर जाके खाना पकाते हैं। मोमिन, यहूदी, साबी, मुख्तलिफ अदियान के नाम लेके बताया गया कि जो भी शिर्क करेगा वो क़यामत के दिन उसका फैसला होगा। असल हमारे लिए इसमें लफ्ज़ मोमिन काबिल गौर है कि मोमिनों के भी शिर्क हैं जब अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ों को शरीक करते हैं। जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग के कपड़े काटे जा चुके हैं। ये लफ्ज़ बड़ा काबिल गौर है। कपड़े काटे जाने से क्या मतलब है? कि बस सीने की देर है। आपने कभी सिलाई की हो, सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है आपको मालूम है? कई के दिन कपड़ा जो है वो इसलिए सिलने से पड़ा रहता है, अभी कटा नहीं, अभी हिसाब नहीं लगाया कैसा होगा, डिज़ाइन क्या होगा। एक दफ़ा कपड़ा कट के तैयार हो जाता है ना तो सीना एक घंटे की देर होती है, एक घंटे में पूरा सूट सिल जाता है, लेकिन पहले जोड़ तोड़ करना, कहाँ से कटे कहाँ से, वो टाइम लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं इनके कपड़े तैयार हैं, कट चुके हैं, सिर्फ सिलाई करने की देर है। इनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, इससे इनके पेट के अंदर के हिस्से और इनकी खालें गल जाएंगी। फिर इनको मारने के लिए लोहे के गुर्स होंगे, और जब कभी जहन्नम से निकलना चाहेंगे तो उनको दोबारा उसी में लौटा दिया जाएगा। ऐसे लगता है कि जैसे जहन्नम में जब मार कुटाई होगी, और जहन्नम आपको पता है कि गहरी है, डीप, जैसे तंदूर, जब लोग उसके अंदर तकलीफ होगी तो वो वहां से उफल उबल के ऊपर आएंगे, जब जहन्नम के ऊपर किनारों पे आएंगे तो चाहेंगे कि चलो हम बाहर ही चले जाएं, तो फरिश्ते लोहे के गुर्स मारेंगे कि वापस जाओ। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे हशर से बचाए और सबको बचाए। कोई मुशरिक है या काफिर है, बड़ी तकलीफ दे हालत है। इसके बाद ईमान वालों के नाते से दो बातें, जो नेक अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा और उस जन्नत में नहरें बहती हैं। अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर में इस रुकू में दो तरह के लोगों का जिक्र किया, और अब हमारे सामने मैदान खुला है। दीन के किनारों में नहीं, उसके बीच में आना है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सूरत मायदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, मुकम्मल अंदर आ जाओ। मैं जब इस आयत को पढ़ रही थी रात को, मैं इसकी तैयारी कर रही थी, तो मैंने बहुत देर इसको सोचा, इसका टॉपिक सोचते सोचते मैं जब सोच रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे समंदर पे कोई घूमने जाते हैं ना लोग, तो बच्चे किनारों पे जाने लगते हैं बहुत करीब, तो माँ पीछे से क्या आवाज़ देती है, बेटा किनारों से हट जाओ, पीछे आ जाओ। या कभी कभी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं जहाँ बहुत टीले टिब्बे हैं, तो एक ऐसी जगह होती है कि जो आगे तक भरी होती है लेकिन उसके नीचे गहरी खाई होती है, तो आप पुकारते हैं देखो किनारों पे ना आना, खतरा होता है ना। गाड़ी चलाते हैं तो आप बिल्कुल रोड के किनारे पे नहीं चलाते, क्या डर है कि गाड़ी खाई में गिर जाएगी। दरिया के ऊपर से गुजरते हैं तो किनारे पे रहना बहुत तकलीफ देता है। वो लोग जो दीन के किनारों पे रहते हैं वो इससे भी ज्यादा खतरे में, क्यों? एक हल्का सा हुलारा आएगा, दीन से बाहर कदम निकल जाएगा। अंदर होता है ना जब बंदा मरकज में, थोड़ा पीछे होगा ना तो कमरे में ही रहेगा, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा पीछे हुआ ना लेकिन दीन के अंदर रहेगा। लेकिन जो बेचारा पहले ही कमरे से किनारे में खड़ा है, वो धक्का लगेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर गिरेगा। तो असल बात यह है कि हमने दीन को मुकम्मल तौर पे इख्तियार करना है। चलिए आगे चलते हैं। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाने वालों और नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह उनको ईमान लाने वालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह ताला इन जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सच्चे मोती भी। वहां इनका लिबास खालिस रेशम का होगा। पसंद है किसी को ये दोनों चीज़ें? चले कौन है जिसको नहीं पसंद, लेकिन महंगा है। प्योर पर्ल्स, एक लड़ी ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं तो उससे उसकी भी हिफाजत नहीं हो पाती, कीमत नहीं दे पाते। और कहाँ वहाँ जहाँ घर मोतियों के बने होंगे। आपको पता है कि जन्नत के घर ईंटों की बजाय पर्ल्स के बने होंगे, क्या कीमत है उस जन्नत की। हरीर कितना महंगा होता है दुनिया में, प्योर रेशम हर एक का दिल चाहता है पहने, लेकिन ख़ास चंद लोग पहनते हैं, क्यों? कि बहुत महंगा है, फिर दूसरी बात है कि उसकी हिफाजत बहुत करनी पड़ती है, धुल नहीं सकता। अल्लाह ताला कहता है वहाँ पहनो और फेंक दो, और ले लो, और मिल जाएगा। लेकिन शर्त है क्या? वहुदू इलत तैयिबी मिनल कौल, वहुदू इला सिरातिल हमीद। इनको पाकीज़ा बात की रहनुमाई कर दी गई और काबिल सत तारीफ राह की हिदायत कर दी गई। यह है कीमत उन चीज़ों की। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोकने लगे, और इस हुरमत वाली मस्जिद से भी जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मुसावी कर दिया है, वहीं के रहने वाले हों या बाहर के हों, जो भी जुल्म के साथ वहाँ इल्हाद का इरादा करेगा, हम इसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। छोटा सा रुकू था, इसका उन्वान क्या है? पाकीज़ा बात की तरफ आओ। अल्लाह ताला ने पहले ईमान वालों की 5 नेमतों का जिक्र किया कि वो दुनिया में नेक अमल करने में सरगर्म रहे, सुस्त नहीं हुए, पाकीज़ा बात कबूल करने की तौफीक बख्शी अल्लाह ने उनको। पाकीज़ा बात क्या है? सबसे पाकीज़ा बात है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे को कबूल किया। इसी तरह पाकीज़ा बात क्या है? कुरान, क्योंकि मन अस्तक मिनल्लाहि हदीसा। फिर उसके बाद पाकीज़ा बात क्या है? अल्लाह के नबी का फरमान। और फिर उसके बाद हर मारूफ, वो लोग जो दुनिया में रहते हुए इन चीज़ों को अपना लेते हैं, अल्लाह ताला उनको तारीफ वाला रास्ता दिखाएगा, ऐसी जन्नतों में ले जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, सोने के कंगन पहनेंगे, रेशमी लिबास और मोतियों से आरास्ता। मैं सोचती हूँ कि कुरान पाक में कंगनों का जिक्र क्यों आता है, चूड़ियों का नहीं आता, ब्रेसलेट का नहीं आता? क्यों? कि कंगन हर दौर में पसंदीदा रहे। आज भी दिल तो यही चाहता है कि इंसान कंगन पहने। ये अलग बात है कि उसके पैसे नहीं, चलो हल्का सा ब्रेसलेट ले लेते हैं। अल्लाह ताला जन्नत में कंगनों की बात करते हैं। कोई अच्छा सा डिज़ाइन आपको कोई अच्छा लगे जो आप ना ले सके, तो अल्लाह ताला को कहा करें कि अल्लाह मैं जन्नत में लूँगी, मेरा ये डिज़ाइन लिख ले। यकीन करें कि वो दिन दूर नहीं कि आपके सामने वो चीज़ होगी, और अल्लाह ताला आपको याद दिलाएगा कि तुमने वहाँ मांगे थे मुझसे, ये लो। पता नहीं उससे भी कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे। लेकिन असल बात क्या है? काम कर लो, कबूल कर लो। आज दुनिया की इन चीज़ों की रौनकें, इनको पाने का शौक, तुम्हें सारा सारा दिन ज्वेलर्स की दुकान पे बैठना पड़ता है। मुझे लगता है सबसे अजियतनाक चीज़ ज्वेलर की दुकान पे बैठना है। जितना वो वक्त लेते हैं और जितनी वहाँ मगजमारी होती है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कहीं और नहीं होती। क्योंकि लेने वाला भी मुख्तात होता है कि मेरा पैसा ज़्यादा ना लग जाए, और देने वाला देने की कोशिश में, वहाँ मुफ्त में मिल जाएंगे, उसकी कीमत यहाँ दे दो कि इस वक्त को ज़ाया ना करो। ईद पे कौन सा सेट पहनूंगी इसको लेने के लिए, उस दिन का पारा मिस ना करो। आपको मालूम है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए क्लास मिस कर देते हैं कि वो ईद की तैयारी करने गए हुए थे, ईद को जोड़े। बास लोग रोज़ा छोड़ देते हैं जिस दिन उनको ईद के लिए शॉपिंग करने जाना होता है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चलिए, उसके बाद मस्जिद हराम के नाते से 3 बातें थी। नंबर 1, सबके लिए है, सिर्फ अरबों का नहीं है ये। दूसरी बात, जो वहां जाके जुल्म करेगा उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। तीसरी बात, मुकामी बाशिंदों, जो वहां मक्का में रहते हैं या जो बाहर से आते हैं, सबके हकूक बराबर हैं, इसलिए वो आपका घर है। कभी भी वहां जाके ये ना सोचा करे कि हम लोग बाहर से आए हुए, हर एक का वहां उतना ही हक है। हमने क्या दुआ मांगनी है अपने लिए, अमल के लिए, सरकों से? कि पहली बात यह कि हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें पाकीज़ा बात को कबूल करने की हिदायत बख्शे, अपने रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान कर दे, और जन्नत में हमें खूबसूरत से कंगन अदा करे। चलिए रुकू नंबर 11 पे, आयत नंबर 26 से। और जबकि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रकू, सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखना, और लोगों में हज की मनादी कर दो, लोग तेरे पास पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी, और दूर दराज की तमाम राहों से भी आएंगे। सच है ना, कितनी दूर से जाते हैं यहाँ से लोग। اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پس تم بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ ہے وہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتیں بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا کہ آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا کسی دور دراز کے درخت سے یا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے، اس کے دل کی پرہیزکاری کی وجہ سے یہ ہے۔ اس میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ جی، یہ تھا رکوع نمبر 11، اس کا عنوان کیا ہے؟ آسمان سے گرا۔ آگے جملہ آپ خود پورا کریں گے۔ کھجور میں اٹکا، چلے، یہاں مشرک کو یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس میں ابتدا میں 13 مقصد بیان کیے ان چھوٹی سی آیتوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے، یعنی مقاصد تعمیر کعبہ کیا کیا تھے، کیا بات ہوئی اس ناطے سے۔ نمبر 1، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود چنی، چوز اس کو اللہ نے کیا، جس کا گھر ہوتا ہے وہی چوز کرتے ہیں نا، یہاں پلاٹ لے لیتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ دوسری بات، کیوں بنایا؟ کہ یہاں شرک نہ ہو۔ پھر طواف، اعتکاف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنے کا حکم دیا۔ اس میں حج کی عام پکار لگائی، ہر ایک آ سکتا ہے، لوگ دور دراز سے بھی آ کے فائدے اٹھائیں گے۔ پھر چند مقرر دنوں میں جانوروں پر اللہ کا نام لیں، قربانی کی طرف اشارہ ہے، قربانی کریں، خود بھی کھائیں، تنگ دستوں کو بھی کھلائیں۔ اسی سے قربانی کے جانور کو خود کھانے کی دلیل بھی آپ کو اسی آیت میں مل رہی ہے، کچھ لوگ مانگتے ہیں یہ دلیل، تو فکلو منہا، اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آیت نمبر 29 میں، کہ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اگلی چیز، اپنا میل کچیل دور کرو، منا کے دنوں کی طرف اشارہ ہے، اپنی نظریں پوری کرو، قربانی، پھر طواف کرو، قدیم طواف، طواف افاضہ جو حج کے کا ایک رکن ہے، پھر بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کے اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی وہاں جا کے بھی بازاروں میں نہ گھومتے رہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور پھر شرک کرنے والے کی مثال دی گئی کہ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ میں اس پہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ جب ہم ایک رب کے نہیں ہوتے نا، تو در در کے بھٹکتے ہیں۔ توحید والوں کو کم از کم یہ فکر نہیں ہے کہ آج کس درگاہ پہ جا کے سجدہ کرنا ہے، آج کہاں جائیں، آج کہاں جائیں۔ اور حیرت ہوتی ہے اس وقت کہ جب لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے، اور پھر، یعنی کسی کی بات بتا رہی ہوں، واللہ عالم کتنی حقیقت ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں حرم میں تھی تو دیکھا کہ اتنے میں ایک شخص ایک دم طواف کرتے ہوئے ہٹا، اس کا سیل فون پہ کوئی بات ہو آ گئی، تو ہٹ کے تو فون پہ بات کر رہے اور شور کی وجہ سے اونچی اونچی کر رہے، آواز سمجھ آ رہی ہے، تو کسی کو کہہ رہا ہے کہ کسی نے اس کو وہاں جا کے کوئی خبر دی ہوگی کسی کام کے کہ وہ نہیں ہو رہا، تو کہنے لگا فلاں جاؤ، عبداللہ شاہ غازی، کوئی بھی درگاہ کا نام لیا اور وہاں جا کے ذرا بکرا دے دو۔ کہاں کھڑے ہو، کہہ کیا رہے ہو؟ شرک انسان کی مت مار دیتا ہے، مشرکوں کی مت ماری ہوئی ہے۔ اگر انسان غور کر کے دیکھے، جو اپنی ماں کو نہ پہچانے وہ کسی اور کو کہاں پہچانے گا، جو رب کو نہ پہچانے وہ کس کو پہچانے گا۔ لہذا شرک نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح شاعر اللہ کے احترام کی بات ہوئی، کہ یہ دل کے تقویٰ کی بات ہے، قربانی کے جانور کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، داڑھی اور اس طرح کی باتیں جو دین کے ریچولز ہیں اس کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، اپنے عمل کی بات یہی ہے کہ جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ہے. کون سا خانہ کا میں صرف مسجدوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اور علم کی محفلوں کے بارے میں، پھر حج کی نیت کرنی ہے اور یکسو ہو کے اس کی بندگی کرنی ہے. چلیے رکوع نمبر 12 کو دیکھتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ. عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون ہوتے ہیں عاجزی کرنے والے؟ مخبتین. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے ہیں. قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، یعنی جب یہ گر جائیں، تو اسے خود بھی کھاؤ، اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزکاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا متی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دو. کیا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرا اللہ تعالی کو ہرگز پسند نہیں. یہ ہے رکوع نمبر 12، اس کا عنوان کیا ہے؟ قربانی کرنے سے پہلے. اس رکوع میں قربانی کے ناطے سے 6 باتیں معلوم ہوئیں. کون کون سی؟ نمبر 1، ہر امت کے لیے قربانی کا قاعدہ مقرر تھا، یعنی شکلیں بدل بدل کے ہر دور میں قربانی تھی. دوسری بات، قربان کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیں. اونٹ شاعر اللہ میں سے ہیں، اونٹوں کو کھڑا کر کے ذبح کیا جائے گا، یہ بھی اسی آیت سے پتہ چلا. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جو مانگتے نہیں، اور ان کو بھی دو جو مانگتے ہیں. 3 حصے ہو گئے نا، ایک آپ کا، ایک ان کا جو نہیں مانگتے آپ کے رشتہ دار، اور تیسرے وہ سوالی جو آپ کے کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں گوشت لینے کے لیے، ان کو بھی دو. اگلی چیز ہم نے یہاں سیکھی کہ جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم رب کا شکر کرو. کتنا بڑا ہوتا ہے اونٹ، اور انسان کے آگے رک کھڑا ہو جاتا ہے. پھر 10 مقاصد بیان ہوئے اس رکوع میں قربانی کے، جلدی سے لکھ لیں اور پھر غور بھی کریں کہ کیا ہمارا بھی یہی مقصد ہے. نمبر 1، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کا ذکر سنیں تو کانپ جائیں، مصیبت آئے تو صبر، نماز قائم کرنا، جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا کیونکہ اس نے ہدایت دی، احسان کی روش اختیار کرنا، اور ان تمام چیزوں پہ اللہ کا شکر، اور سب سے بڑھ کے آخری بات جو اس رکوع کا تھیم ہے وہ کیا ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. نہ خون ملتا ہے اللہ کو، وہ تو زمین پی گئی، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی. किस नियत से किया, इरादा क्या था, क्या लेना चाहते थे। हम सबको भी कुर्बानी करने से पहले एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचना है, क्यों कर रही हूँ, किस माल से कर रही हूँ, क्या ये कबूल हो जाएगी, कोई ऐसी बात तो नहीं है मेरे अंदर कि जिसकी मौजूदगी मेरी इस नेकी को कबूल करने से रोक दे, रियाकारी, दिखावा और कुछ ऐसी ही बातें। और आखिरी बात क्या थी इस रुकू में कि अल्लाह ईमान वालों का दिफा करता है। हम क्या कहते हैं, अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करेंगे तो खतरे में होंगे, इस्लामी हुलिये में बाहर निकलेंगे तो खतरा है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं दिफा करूंगा। सवाल यही है कि क्या वाकई हम डिजर्व करते हैं कि अल्लाह हमारा दिफा करे। अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करना है, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए कुर्बानी करनी है। कुर्बानी कुर्ब से है, इंसान अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए ये करता है। और इसी तरह फिर हमने इन तमाम चीज़ों को जो सुना इस पे अमल की दुआ करनी है। रुकू नंबर 13 को देखते हैं। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं इन्हें अभी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मज़लूम हैं, बेशक इनकी मदद पर अल्लाह कादिर है। ये हैं वो जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया सिर्फ इनके इस कौल पर कि हमारा परवरदिगार फ़क़त अल्लाह है। अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक दूसरे से ना हटाता रहता तो इबादत खाने और गिरजे, यानी गिरजा क्या है, गिरजा, और मस्जिदें और यहूदियों के माबद और वो मस्जिदें भी ढा दी जाती जिन्हें जहां अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी ज़रूर उसकी मदद करेगा। सच है ना, हमारा यकीन होना चाहिए। अल्लाह की मदद क्या है, अल्लाह के दीन की मदद। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला, बड़े गलबे वाला है। ये वो लोग हैं कि अगर हम ज़मीन में इनके पांव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाजें कायम करें और ज़कातें अदा करें और अच्छे कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से रोक दें। तमाम कामों का इंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। अगर ये लोग आपको छुटलाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इनसे पहले कौम नूह, आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और मदियन वाले भी अपने नबियों को छुटला चुके हैं, मूसा भी छुटलाए गए। बस मैंने काफिरों को यूं ही मोहलत दी फिर इनको धर लिया, फिर कैसा रहा मेरा अजाब। बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने तहोबाला कर दिया इसलिए कि वो जालिम थे, बस वो अपनी छतों के बल ऊंधी हुई पड़ी हैं। और बहुत सारे आबाद कुएं बेकार पड़े हैं, बहुत से पक्के और बुलंद महल वीरान पड़े हैं, यानी वहां रहने वाले कहाँ गए, सब जमीन के अंदर चले गए। अफलम यसीरू फिल अर्द, क्या उन्होंने जमीन में सैर व सियाहत नहीं की। जो इनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही इन वाक्यात को सुन लेते, बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि दिल भी अंधे हो जाते हैं वो जो सीनों में है। वयस्ताजिलूनक बिल अज़ाब, और वो अजाब को आपसे जल्दी तलब करते हैं। अल्लाह हरगिज अपना वादा नहीं टालेगा, हालबत्ता आपके रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है। बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैंने ढील दी फिर आखिर इनको पकड़ लिया, फिर मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ये तरकु नंबर 13, इसका उन्वान क्या है, जंग की इजाज़त है। पहली दफ़ा इन आयतों में मक्का में पिसे हुए लोगों को मदीना आने के बाद इजाज़त मिली कि अब तुम भी बदला ले सकते हो। इसमें जंग की इजाज़त के नाते से 6 बातें बयान हुई। नंबर 1, कि उन लोगों के खिलाफ अब तुम भी हाथ उठा सकते हो जिन्होंने तुम पे जुल्म किया। ये इजाज़त क्यों मिली, क्योंकि तुम मज़लूम हो, यानी मज़लूम बदला ले सकता है, और इसलिए कि इन्होंने तुम्हें अल्लाह के घरों से निकाला यानी बैतुल्ला से। इस बात पे कि इन्होंने कहा कि हमारा रब एक है, यानी तौहीद की वजह से तुम पे ये मुश्किल आई। और आखिर में अल्लाह ताला ने अपना कानून बताया कि अगर अल्लाह एक गिरोह के जरिए दूसरे को न हटाता तो इबादत गाहें मुस्मार कर दी जाती और अल्लाह उनकी मदद करेगा जो उसकी मदद करते हैं। इस्लाम का नज़रिया जिहाद वाज़े होता है इस आयत से। उसके बाद इस्लामी हुकूमत की चार जिम्मेदारियों का इजहार किया गया। आज भी इस्लामी निज़ाम का नारा लगाने वालों के लिए ये आयत काबिले तवज्जो है। क्या करे इस्लामी हुकूमत? सबसे पहले नमाज कायम करे, ऐसा माहौल बनाए मुल्क में कि हर बंदा नमाज पढ़े, ज़कात अदा करे, नेकी का हुक्म दे, फिर बुराई से रोके। आज हम इस्लामी निज़ाम की बात करते करते बाज़ दफ़ा अपने दीन को और ही ज़्यादा दूसरों की नज़रों में गलत रंग में पेश करते हैं। याद रखिए कि किसी मुल्क में इस्लाम कब आएगा? जब वहाँ के लोगों में इस्लाम आएगा। कोई हुक्मरान खुद पहले जब तक दीन पे अमल नहीं करता तो वो दूसरों को कैसे दीन सिखाएगा? और अगर हर शख्स के घर के अंदर इस्लाम आ गया तो वो सारे घर मिलके उस मुल्क को भी इस्लामी बना देंगे। वरना होता क्या है कि जब शरीयत बिल की बात होती है तो सबसे ज़्यादा उसका मजाक मुसलमान करते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि मस्जिदों इजाज़ अगर हुक्म भी दिया कि नमाजें पढ़ो तो उस वक़्त लोग बाथरूमों में घुस गए, सिगरेट नोशी से मना किया तो जाके बाथरूम्स में उन्होंने सिगरेट पिए, अगर होटल बंद करवा दिए रमज़ान में तो पीछे से जाके बैक डोर से जाके अंदर खाने का है। अल्लाह के नबी ने जो इस्लाम दिया वो हुक्म के ज़रिए नहीं दिया, जहन के ज़रिए नहीं दिया, दिल के रास्ते दिया। पहले लोगों के दिल बदले, एक्सेप्टेंस आई, फिर उनके दिमागों को फैसले सुनाए। आज भी यही तबलीग काम करेगी कि लोगों के दिल पकड़ लें। हम इतनी मुश्किल मुश्किल बातों से दीन पेश करते हैं, हुक्म, जाहिर बातें, ये करो वो करो, ये भी करना है दीन के नाम पे, अब तुम आ गए, अब तुम्हारी मुश्किल आ गई, लोग भाग जाते हैं। नहीं, दिल पकड़ लीजिए। ये कुरान जो है जब दिल में उतरता है तो खुद ब खुद फिर दिल चाहता है कि इंसान अमल करे। फिर उसके बाद कुछ छुटलाने वाली कौमों का जिक्र हुआ, कौम नूह, समूद, आद, ये लूत, सबके नाम इसमें लिखे हैं। अल्लाह ताला ने इन मुनकरीन को पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया और फिर कहा कि देखो मेरी सज़ा कैसी हुई। इससे क्या पता चलता है कि ऐसे हालात से इबरत लेनी चाहिए। और वो बस्तियां जहां लोग बसते थे आज खंडर हैं, वीरान हैं, और कितने ही कुएं ऐसे हैं जो बिल्कुल वीरान पड़े हैं। मैंने अपने इजिप्ट के ट्रिप में इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस किया, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बिल्कुल वीरान, जैसे पिरामिड्स हैं या कोई और चीज़ें हैं, कुएं इतने हैं बिल्कुल खुश्क बंजर। तो मैं वहाँ खड़े होकर यही सोच रही थी कि कहाँ गए इसमें रहने वाले। आज हम इसको एक सिर्फ इस नज़र से देखने आते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है और फ़न है और इसमें कुछ ना कुछ कर दो, लेकिन वो लोग किधर हैं? चीज़ें तो मौजूद हैं, वो लोग कहाँ हैं? इसी तरह वो कौमें जो अल्लाह की बातों को नहीं मानती, अल्लाह ताला उनको नीस्तो नाबूद करता है। और आखिर में दिल अंधे होते हैं। एक हकीकत है कि बाज़ लोग दुनिया में चलते फिरते तो हैं, आंखें होती हैं लेकिन उनकी आंखें अंधी हैं, कान हैं लेकिन सुनते नहीं, और दिल है लेकिन उससे समझते नहीं। कल की आयत तदब्बुर अगर आपने रात को सुनी और आपने गौर किया जात के बाद में, तो उसमें भी तो यही था ना कि वमन आरद अन ज़िक्री व इन्न लहू मईशतन ज़नका व नख्शुरुहू यौमल क़ियामती आमा, कि जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन हकीकत में उसको अंधा करेगा। तो दुआ यही करनी है कि अल्लाह ताला दुनिया में हमारी जहालत के अंधेरे हमारी आंखों से हटा दे, पर्दे उतार दे, और क़यामत के दिन हमारी निगाहों को सही सालम रखे। एक और इसमें अमल की बात क्या है कि इस्लामी हुकूमत के क़याम में मेरा क्या दखल है, इस काम को करने की कोशिश करनी है। क्या कर सकते हैं हम इस्लामी निज़ाम के आने के लिए? हम अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में अच्छी बात करें। आप देख रहे हैं कि इस आयत में फिर अमर बिल मारूफ की बात हुई कि किस तरह से लोग जब इस काम को नहीं करते तो फिर उस नतीजे में अल्लाह ताला उस कौम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो लिहाजा अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के निज़ाम को हमने आम करना है।